क्या जाना जी? आप पूछिए और क्या है?
सब आयत मुबारक जिसने माल जोड़ा और गिन गिन कर रखा, सवाल ये है कि हम भी माल अपनी ज़रूरत से ज़ायद कमाते हैं ताकि मुस्तकबिल अच्छा रहे, इस आयत के तहत हमारे लिए क्या हुक्म है?
हाँ, असल में हुआ ये कि ये आयत या इस कस्म की आयत के जिसमें माल जोड़ने को जमा करने को मना किया गया, जब ज़कात की आयत आई तो ये हुक्म के एतबार से मनसूख हो गई। ठीक, कि अब अगर माल को, अब जैसे फरमाया कि ज़कात दो, अब मुझे बताइए जब माल जमा होगा तो ज़कात देंगे ना, ज़कात कैसे देंगे आप? तो इसका मतलब हुआ कि माल को जोड़ने में ज़कात है, लिहाजा उस आयत के बाद जब ज़कात की आयत नाजिल हुई तो तिलावत तो उसकी बरकरार है। ये एक फ़न है पूरा, कि इमाम जलालुद्दीन सियूती ने अल इतकान में तकरीबन इसको 20 आयतों को शुमार किया है जो अहकाम के एतबार से मनसूख हैं मगर तिलावत मनसूख नहीं। बाज ऐसे हैं जिसकी तिलावत मनसूख हो गई मगर हुक्म जारी। मिसाल तौर जैसे जानी को संसार करना, ये आयत जब नाजिल हुई तो आयत मनसूख हो गई, और आयत मनसूख होने के बाद में अमल उसका मनसूख नहीं हुआ कि जानी को संसार किया जाए। जब ये मसला आया तो इसका लोगों ने बहुत ज़्यादा मजाक किया और एक ड्रामा बनाया, बाज़ाब्ता कि फिल्म बनाई कि पहला पत्थर कौन मारेगा, यानी संसार करने को एक मजाक उड़ाया गया कि भाई पहला पत्थर कौन मारेगा, इस पर क्या फिल्म, एक ड्रामा बनाया गया। तो एक जस्टिस ने शरई अदालत के फैसले में ये लिखा जो मेरे पास मौजूद है कि संसार करने पर 51 रावी जो हैं उनकी रिवायत, 51 साहबा ने इसको रिवायत किया कि जानी पर जिना जब साबित हो जाए तो उसको संसार किया जाए, और एक सहाबी को भी संसार किया गया। ये आपके दिल में कोई कदूरत ना रहे, मैं उसको पूरा बयान कर देता हूं। वो ये है कि हजरत माइज रज़ियल्लाहु अन्हु, ये देखिए ये ईमान की ये कुव्वत है, गुनाह हो गया, आदमी फरिश्ता नहीं, हो गया गुनाह, लेकिन गुनाह होने के बाद किसी ने नहीं देखा, अजाब से बच गए एक तरह के, जाहिर किसी ने भी जब नहीं देखा, मगर एक जिसको सूफिया कहते हैं ना नफ्से लवामा, इंसान के बदन में एक मुफ्ती है जिसका नाम है लवामा, उसको नफ्से लवामा कहते हैं सूफिया मशा। कोई आप बुरा काम कीजिए किसी ने नहीं देखा मगर आपका नफ्स मलामत करता है कि ये काम बुरा हुआ। जैसे आप रोज़ा तोड़ दें, कोई देख रहा है आपको तोड़ते हुए, गुसल खाने में पानी पी लें, किचन में कोई नहीं हो जाकर के आप नाश्ता करके बाहर आ जाएं, कोई देख रहा है आप, मगर नफ्स मलामत करेगा ये काम गलत हुआ। हजरत माइज का नफ्स मलामत कर रहा है ये काम गलत, उन्होंने आकर हुजूर के सामने इतराफ़े जुर्म कर लिया और क्या कहा, हुजूर मुझे पाक कर दें। हुजूर ने ऐसे मुंह फेर लिया, वो इधर आकर कहा हुजूर मुझसे ये गलती हो गई और मुझे पाक कर दें। फिर हुजूर ने इधर मुंह फेर लिया, फिर वो इधर आए, फिर इधर आन करके कहा हुजूर मुझसे ये गुनाह हो गया मुझे पाक कर दें, फिर इधर मुंह फेर लिया। तो हमारे यहाँ कोई अगर जुर्म का एतराफ़ 4 मरतबे करे तो उसको संसार कर दिया जाएगा, चूंकि वो आए थे कि मुझे पाक करें आप, तो क्या हुआ फिर वो चौथी मरतबे इधर आ गए और कहा हुजूर मुझे पाक कर दें। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको संसार करने का हुक्म दिया। जब वो संसार किए गए, बाज़ लोगों ने तबसरा किया कि देखो अल्लाह ताला ने तो ऐब छुपा लिया था, इन्होंने बिलावजह किस ऐब को ज़ाहिर किया। इब्ने कसीर ने गीबत के बयान में इस हदीस को नकल किया और वो ये है कि कुछ लोग आगे जा रहे थे, उन्होंने हुजूर को पीछे नहीं देखा आते हुए और इसी पर तबसरा कर रहे थे कि देखो अल्लाह ताला ने तो पर्दा रखा और बिलावजह इन्होंने उसको जाहिर करने के बाद और ऐसे अजाब में मुब्तला हुए और संसार हुए वगैरह वगैरह। तो हुजूर ने उनकी बात सुन ली, सुनने के बाद इब्ने कसीर की जो रिवायत वो ये है कि उन्हें रोका, इधर एक गधा मरा पड़ा हुआ था तो आपने फरमाया ये गधे का गोश्त खा। मैंने कहा हुजूर तुम मुर्दार गधा, इसका गोश्त कौन खाए? फरमा तुम तो इससे बदतर चीज़ खा चुके। कहा वो क्या? फरमा तुम फलां की गीबत कर रहे, तो गीबत को कहा ना भाई का गोश्त खाने के मुतार, तुम तो गीबत कर रहे। तो ज़ाहिर है कि अब सब चौकस हो गए। तो उसने फरमाया कसम खुदा कि मेरी निगाहें देख रही वो तो जन्नत की नहरों में गोते लगा रहे। और एक हदीस में है कि माइज ने ऐसी तौबा की कि उसकी तौबा अगर पूरी दुनिया पर रख दी जाए तो गालिब आ जाए, यानी सारी दुनिया के लोग तौबा करते रहें तो उसकी तौबा का वो वजन नहीं جو حضرت مائز نے کی. اب کیا ہوا, اعتراف جرم کرنے کے بعد وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں پاک ہو جاتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو سزا نہیں ملے گی. اچھا, کیا معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا جو پوچھا تھا آپ نے؟ جی ہاں رکھا نا. یہ تو اب کیا ہوا, اس پر جو آیت ہے تلاوت کے اعتبار سے آیت منسوخ ہے, مگر حکم میں منسوخ نہیں ہے کہ سنسار کیا جائے گا. اور 51 راوی, جیسا میں نے کہا نا, ایک جسٹس نے جو فیصلہ لکھا اس میں 51 راوی, کہ 51 راویوں نے اس کو بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے اس کو سنسار کیا. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد میں دوسری آیت جو ہے وہ اس کو ایک طرح سے منسوخ کر دی. جیسے زکوٰۃ کے معاملے میں غلام کو آزاد کرنے میں زکوٰۃ کا مال دیا جائے, اب غلام کا سسٹم ہی نہیں, اب کس کو آزاد کریں گے؟ اب آپ نہیں ہے نا. پہلے یہ ہوتا کہ کوئی آدمی اسلام قبول کرے تو اسلام قبول کرنے بھی اس کو زکوٰۃ کے مد سے مدد دی جاتی تھی, تو آج اس پہ عمل نہیں ہوتا. کیسے اس کی مدد کی جائے؟ ایک آدمی اگر صاحب ثروت ہے تو اس زمانے میں یہ تھا آدمی کی دل جوئی کے لیے کہ آج اسلام قبول کر رہا ہے تو اس کو مالی طور پر اس کی مدد کر دی جائے. اور آج بھی جب لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ مسلمان کلمہ پڑھنے میں اور لوگ مدد کرتے ہیں, تو اب ایک بہت عجیب بات ہے, پہلے میں نے کہا پھر دوبارہ سن لیں, کوئی آدمی اگر آپ کے پاس آئے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مجھے کلمہ پڑھا دیں, اگر آپ نے کلمہ نہیں پڑھایا تو آپ کافر ہو جائیں گے. اس لیے کہ اس کے کفر پر آپ راضی رہے تو کفر پر رضا جو ہے یہ بھی کفر ہے. فوراً کلمہ پڑھائی, یعنی کہ آپ مولانا کو طرح بھی چلو ابھی مولانا آئیں گے ذرا زور میں تم بیٹھو ذرا پھر جائیں گے مسجد پہ, نہیں اسی وقت کہیں مولانا کے پاس کہا جی ابھی میں مصروف ہوں, نہیں بالکل نہیں, اسی وقت کلمہ پڑھائے. کوئی تفصیلی توبہ کرانی ہو سند بنانی ہو بعد میں بنا دے, اسی وقت اس کو جو ہے وہ کلمہ پڑھائے, اور ورنہ وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. غرض یہ تو بڑی لمبی بحث ہے, تو غرض یہ کہ یہ مال جوڑنے کی جو ممانعت ہے یہ زکوٰۃ کی آیت سے پہلے کی, جب زکوٰۃ کی آیت نازل ہو گئی تو زکوٰۃ تو مال پہ دی جائے گی, جب مال ہی نہیں جوڑ آپ تو زکوٰۃ کائے پہ دیں گے؟ میرا خیال ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے.